हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऋषभ अपने पिता की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। सिर पर हाथ रखते हुए उसने दूसरी तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, ठीक है तो फिर आप ही बताइए क्या करूं, आखिर क्या चाहते हैं आप? मर जाऊं मैं कहीं जाकर, तभी आपको शांति मिलेगी। ऋषभ की बातें सुनकर उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वो बस अपने बेटे को समझाना चाहते थे, उसे सही राह पर लाना चाहते थे। उन्हें शिविका की तरह ही ऋषभ का भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे, जैसा शिविका ने अपने कॉलेज के समय से ही किया था। उसी तरह ऋषभ भी बाकी सब छोड़कर उनकी बात माने और कंपनी ज्वाइन कर ले। ऋषभ और शिविका में बहुत अंतर था, जमीन और आसमान का। शायद ये अंतर उसके पिता को नजर नहीं आता था। वो दोनों बच्चों को एक ही तरह ट्रीट करना चाहते थे, दोनों के बीच के अंतर को नहीं देख पा रहे थे, ना ही वे ऋषभ को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये बात बोलते हुए ऋषभ बहुत निराश और गुस्से में लग रहा था। उसे इस तरह देखकर उसके पिता को भी बुरा लगा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? देखो ऋषभ, इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना इफेक्ट हो गया तो कैसे चलेगा? तुम्हें पता भी है लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ता है। ऊपर से तुम इतने सेंसिटिव हो, जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है तुम्हें और दुखी भी हो जाते हो बहुत जल्दी। अपने पिता की बात सुनकर ऋषभ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए थोड़ी गहरी आवाज में कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस परेशान हो चुका हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आता आप क्यों मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं कह चुका हूं पहले भी कि मैं ऑफिस जाकर वही रोज की बोरिंग लाइफ नहीं जीने वाला, मुझे अपना अलग कुछ करना है। रही बात पढ़ाई की, तो वो मैं बस आपके और दी के लिए ही कंप्लीट करना चाहता हूं, जिससे आप लोगों का नाम खराब ना हो। ऋषभ की बातें सुनकर उसके पिता ने थोड़ी देर रुककर चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर नहीं में अपना सिर हिलाते हुए बोले, क्या ही बोलूं मैं अब, तुम तो मेरी बात कभी नहीं सुनते, जाओ करो अपनी मनमानी। इतना बोलकर ऋषभ के पिता ने अपनी व्हीलचेयर दूसरी तरफ मोड़ दी और वहां से वापस आने लगे। उन्हें वहां से जाते देख ऋषभ भी वहां नहीं रुका और वहां से बाहर निकल आया। पहले तो वो ड्राइवर से ये कहने वाला था कि वो कुछ देर पहले ही समर को लेने उसके कोचिंग सेंटर चला जाए, लेकिन अब उसने सोचा कि घर पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, कहीं बात और ना बढ़ जाए, इसलिए वो खुद ही वहां से चला जाता है। ये सोचते हुए ऋषभ खुद कार में बैठ गया और उसने ड्राइवर से समर के कोचिंग सेंटर चलने को कहा। ऋषभ अपनी कार से समर के कोचिंग सेंटर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस बिल्डिंग के बाहर समर नहीं है। उसने सोचा कि वो अभी अंदर क्लासेस में होगा, लेकिन तभी उसे वहां पर एक लड़का उस कोचिंग बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ऋषभ से रहा नहीं गया और उसने उससे समर के बारे में पूछा। इत्तेफाक से वो वही लड़का था जो थोड़ी देर पहले समर से टकराया था। जैसे ही ऋषभ ने उससे समर के बारे में पूछा, उस लड़के ने जवाब दिया, सर वो तो काफी देर पहले ही निकल गए हैं यहां से, आधा घंटा हो गया, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो स्टूडेंट पहले भी ऋषभ को कई बार वहां पर देख चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऋषभ बार बार क्यों आता है। पहले उसे लगा था शायद वो समर का दोस्त है या फिर उसकी क्लास में होगा जिसे उससे कुछ काम होगा, लेकिन आज जब उसने समर के बारे में इस तरह पूछताछ की तो उस लड़के को ऋषभ पर थोड़ा डाउट हुआ, इसीलिए उसने ये सवाल किया। उस लड़के की बात का जवाब देते हुए ऋषभ ने कहा, देखो जैसे वो तुम्हारे सर है ना, वैसे ही वो मेरे भी सर हैं और बस इसीलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं, अब तक मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आया है। ऋषभ ने इतना कहा और वापस अपनी कार के अंदर बैठ गया। वो लड़का इस बारे में सोचता हुआ कुछ मिनट तक वहां पर ही खड़ा रहा, लेकिन फिर वहां से चला गया क्योंकि उसकी क्लास खत्म हो गई थी। ऋषभ कोचिंग सेंटर के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और समर आखिर कहां हो सकता है। ये सोचते हुए उसने समर को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन वो उसे फोन करने से पहले थोड़ा डर रहा था, ये सोचकर कि पता नहीं समर उसका फोन रिसीव करेगा भी या नहीं, क्योंकि वो उससे नाराज था कल वाले इंसिडेंट को लेकर। अपने मन में ये सब सोचते हुए अपना फोन हाथ में पकड़े हुए ऋषभ ने मोबाइल फोन की तरफ देखते हुए कहा, क्या करूं, नंबर डायल करूं या नहीं? नहीं नहीं, कहीं वो और ज्यादा नाराज ना हो जाए। एक काम करता हूं, देख लेता हूं यहीं कहीं होगा, लेकिन आधे घंटे पहले निकला है तो क्या पता कहां पहुंच गया होगा, वैसे क्या पता अपने घर वापस चला गया हो। ऋषभ अपनी इन सब सोच में ही डूबा हुआ था, तभी आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे उसके ड्राइवर की आवाज आई, सर अब कहां चलना है हमें? ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए ऋषभ बोला, हाँ रुको एक मिनट, अभी वही सोच रहा हूं मैं भी। इतना बोलते हुए ऋषभ ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और कुछ सोचा। ड्राइवर की बात का जवाब देते हुए ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और आखिरकार एक गहरी सांस लेते हुए उसने समर का नंबर डायल कर दिया और मोबाइल फोन अपने कान से लगा दिया। कॉल पर बेल बज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से समर ने अभी तक कॉल रिसीव नहीं किया था, इसीलिए ऋषभ मोबाइल फोन कान से लगाए हुए धीमी आवाज में बोल रहा था, कम ऑन समर, प्लीज पिकअप द डैम कॉल, और कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ समर मीरा के साथ वहां कोचिंग सेंटर और उसके शोरूम के बीच पड़ने वाले एक छोटे से कैफे में बैठा हुआ था। उसने अभी अभी उन दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की थी और साथ ही मीरा ने कॉफी के साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स और कुकीज भी ऑर्डर किए थे। वेटर स्नैक्स पहले देकर चला गया क्योंकि कॉफी आने में थोड़ा समय लग रहा था। दोनों ही अपनी अपनी कॉफी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मीरा ने बात शुरू करते हुए समर से पूछा, करण कहाँ रहता है आजकल? तुम्हें पता है हम कब से नहीं मिले हैं? पिछले 4 महीने में बस 1 या 2 बार ही मिले हैं और कभी कभी फोन पर बात होती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भूल गया है वो मुझे। समर और मीरा जब भी मिलते थे ज्यादातर करण से रिलेटेड बातें ही होती थी। समर इस बात से ऑफेंड भी नहीं होता था क्योंकि उसे पता था मीरा और करण बेस्ट फ्रेंड्स हैं कॉलेज टाइम से, और वो करण के जरिए ही मीरा को जानता है। इसलिए मीरा का सवाल सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मीरा, वो भाई पता नहीं। हाँ, शायद आजकल काफी ज्यादा बिजी है भाई, उनके ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वो काफी लेट आते हैं ऑफिस से और फिर थके हुए भी होते हैं, शायद इसीलिए। बट कोई बात नहीं, तुम संडे को घर आ जाना, मिल लेना उनसे। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी एक वेटर एक ट्रे में उन दोनों की कॉफी लेकर आया और उसने उन दोनों के सामने एक एक कप रख दिया और वहां से चला गया। वेटर के आने से उनकी बातचीत कुछ देर के लिए रुक गई। कॉफी आते ही समर ने तुरंत ही अपना कप हाथ में पकड़ लिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। अपना कप वापस टेबल पर रखकर उसने पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने स्क्रीन पर देखा तो ऋषभ का इनकमिंग कॉल था। ये देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। मीरा ने कॉल आने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए नोटिस किया। इस वक्त वो थोड़ा परेशान लग रहा था और मीरा की तरफ देखते हुए कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। मीरा को लगा शायद उसके सामने होने की वजह से समर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो मीरा ने उसे कंफर्टेबल करते हुए बड़े ही आराम से कहा, कोई बात नहीं, तुम कॉल रिसीव कर लो।
मीरा की बात सुनकर समर ने हल्का सा मुस्कुराया और एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से उठ गया, क्योंकि वो मीरा के सामने ऋषभ से बात नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था दूसरी तरफ से वो क्या बोलेगा और जवाब में फिर उसे क्या बोलना पड़ेगा। समर को कॉल रिसीव करने के लिए वहां से उठकर जाते देख मीरा ने बस उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और वो अपनी कॉफ़ी पीने लगी। वहीं समर कैफे से बाहर निकल कर आया और उसने कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या हुआ है? और अभी टाइम नहीं हुआ है, मैं आ जाऊँगा टाइम से, वही याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है ना तुमने? कॉल रिसीव करते ही समर ने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। समर ने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रूड होकर ऋषभ से बात की, लेकिन ऋषभ ने उसकी टोन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा वो ये सुनकर ही खुश हो गया कि समर वहां पर आने के लिए रेडी है और वो अभी तक कल की बात को लेकर नहीं बैठा हुआ है। इसलिए ऋषभ खुश होते हुए बोला, तुम टाइम से आ रहे हो? रियली? वाओ, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी मैंने जो भी मिसबिहेव किया हो अब तक, लेकिन तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने इतनी जल्दी मुझे माफ़ कर दिया। रियली थैंक यू सो मच, तुम बहुत ग्रेट हो। वैसे मैं तुम्हें लेने के लिए आया हुआ हूँ और वैसे भी टाइम तो होने ही वाला है ना, कहाँ पर हो तुम बताओ, मैं आ जाता हूँ। ऋषभ ने काफ़ी नॉर्मल वे में एकदम आराम से उससे पूछा, लेकिन उसके इस तरह रोज़ रोज़ लेने आने वाली बात से समर थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, क्या है तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का नाटक? मैंने तुम्हें मना किया हुआ है ना कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ कार भेज दिया करो, या फिर वो भी नहीं, मैं अकेले भी आ सकता हूँ, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं हो मेरी कोई भी बात, और तुम्हें ऐसे मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। भूलो मत, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। समर को इतने गुस्से में बोलता हुआ सुनकर ऋषभ बीच में बोला, सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और मैं कोई तुम्हारी बेबी सिटिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम आ सकते हो, बट वो आज मैं ना थोड़ा सा नर्वस था इस बात को लेकर कि पता नहीं तुमने मुझे माफ़ किया होगा या फिर नहीं, और तुम आओगे भी या नहीं। मैं बहुत कन्फ्यूज भी था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आ जाता हूँ, बट पक्का प्रॉमिस, मैं अब से तुम्हें रोज़ रोज़ लेने नहीं आऊँगा, लेकिन कभी कभी तो आ सकता हूँ ना, उसकी परमिशन है ना सर जी?